ये है संयुक्त राष्ट्र रेडियो और मैं हूं महबूब खान, साप्ताहिक समाचार परिक्रमा के साथ। 6 जुलाई 2018 के इस बुलेटिन में आप सुन सकेंगे। तमाम प्रगति के बावजूद लोगों को नहीं मिल रही हैं अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। बहुत से गरीब देश अपने लोगों की जरूरतों के लिए होंगे अन्य देशों से इम्पोर्ट यानी आयात पर निर्भर। सीरिया के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में युद्ध से भारी तबाही, लाखों लोग बेघर। महासचिव ने बांग्लादेश की यात्रा करके सुनी रोहिंग्या रेफ्यूजीज की दिल दहला देने वाली आप बीती और चीन में कई वर्षों से नजरबंद एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के कई संगठनों ने एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि लगभग हर देश में ऐसे हालात हैं कि तमाम लोगों को अच्छी किस्म यानी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं नहीं उपलब्ध हो रही हैं। ये रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व बैंक और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने मिलकर तैयार की है। WHO ने एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि तमाम देशों में अक्सर बीमारियों के कारणों का सही पता नहीं लगाया जाता है। अगर बीमारियों के कारण भी पता चल जाएं या नहीं भी चलें तो भी दवाइयां सही तरीके से नहीं दी जाती हैं। अक्सर गलत या अधूरा इलाज किया जाता है। ज्यादातर मामलों में इलाज के लिए चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं या तो समुचित नहीं होती हैं या फिर वहां कामकाज ठीक से नहीं होता है। रिपोर्ट कहती है कि खासतौर से ये हालात कम और मध्य आमदनी वाले देशों में ज्यादा बड़ी परेशानी और चुनौती पेश करते हैं। इन देशों में अस्पतालों में इलाज कराने वाले करीब 10% मरीजों को संक्रमण लग जाता है, जबकि अन्य देशों में ये आंकड़ा 7% है। रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि हर एक नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना बहुत जरूरी और हर सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके अलावा जब लोग स्वस्थ रहते हैं तो बेहतर कामकाज करते हैं और अंततः देश के आर्थिक हालात में योगदान करते हैं और खुशहाली में हाथ बटाते हैं। रिपोर्ट लिखने वालों ने तमाम देशों की सरकारों से जोरदार अपील करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी ठोस और टिकाऊ स्वास्थ्य रणनीति बनाएं जिनसे लोगों का जीवन बेहतर हो सके। रिपोर्ट लेखकों ने इस कहावत को नकारा है जिसमें कहा जाता है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी शानो शौकत यानी लग्जरी है जिसे सिर्फ धनी देशों के नागरिक ही पा सकते हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया के तमाम इंसानों को बिना किसी भेदभाव और बाधा के अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे वो बेहतर जीवन जी सकें। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने कहा है कि बहुत से गरीब देशों के अपने लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों से इम्पोर्ट यानी आयात पर निर्भर रहने की बहुत ज्यादा संभावना है। संगठन ने मंगलवार को कहा कि इन ज्यादातर गरीब देशों की आबादी लगातार बढ़ रही है और उनके पास प्राकृतिक संसाधनों की बहुत तेजी से कमी होती जा रही है। खाद्य और कृषि संगठन ने इस बारे में एक ताज़ा रिपोर्ट तैयार की है कि अगले एक दशक के दौरान खाने पीने की चीज़ों की पैदावार, उपलब्धता और कारोबार का रुख क्या होगा। एजेंसी का कहना है कि अगले एक दशक के दौरान ऐसे देशों से ज़रूरी चीज़ों का निर्यात बढ़ने की संभावना है जहां खेतीबाड़ी के इस्तेमाल के लिए ज़मीन भरपूर है। ऐसे देश अमरीका क्षेत्र में ज़्यादा हैं, लेकिन मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्रों के देशों में ऐसे हालात नहीं हैं, यानी उन देशों में खेतीबाड़ी के लिए समुचित जमीन उपलब्ध नहीं है। साथ ही पानी की उपलब्धता भी बहुत कम है जिससे इन देशों को अन्य देशों से जरूरी सामान के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इनमें रोजमर्रा काम आने वाली चीजें और जीवित रहने के लिए खाने पीने के सामान शामिल हैं। इतना ही नहीं, मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीकी देशों में मौसम के बिगड़ते मिजाज की घटनाएं भी बहुत होती हैं। इनमें सूखा और अकाल पड़ना भी शामिल है। इस वजह से इन देशों में खेतीबाड़ी बहुत कम ही हो पाती है। वैसे भी इन देशों में चूंकि प्राकृतिक संसाधनों की भारी किल्लत है, इसलिए इन देशों में खाने पीने की चीजों की भारी कमी होती है। इसका नतीजा होता है कि इन देशों की बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार हो जाती है। खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि इस बढ़ती समस्या का सामना करने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें पेश की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयात पर निर्भर रहने वाले देशों को अपने यहाँ ऐसी फसलें पैदा करने से बचना चाहिए जिन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इसके बजाय उन्हें ग्रामीण इलाकों में खेतीबाड़ी की टिकाऊ तकनीक और ज्यादा कीमतें देने वाले पदार्थों के उत्पादन में ज्यादा धन निवेश करना चाहिए। सीरिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में संघर्ष और युद्ध और ज्यादा गंभीर और खतरनाक होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कर्मियों का कहना है कि इस वजह से दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR का कहना है कि सीरिया की सरकारी सेनाओं ने 20 जून से डेरा गवर्नरेट में विपक्षी लड़ाकों के खिलाफ व्यापक सैनिक अभियान चलाया हुआ है। तब से वहां से करीब 2,70,000 लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सरकारी सेनाओं ने इन हमलों में बमबारी और जमीनी लड़ाई का सहारा लिया है। इस लड़ाई से प्रभावित हो रहे लोगों की मदद के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने लोगों को खाना पानी उपलब्ध कराना शुरू किया है, जो करीब महीने भर तक उनका काम चला सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रवक्ता बेटिना लुएशेर का कहना था कि साल 2011 में युद्ध शुरू होने के बाद से दक्षिणी इलाके में लोगों का ये सबसे बड़ा विस्थापन है। उनका यह भी कहना था कि इस हिंसा की वजह से विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए काम करने वाले लोग भी विस्थापित हो गए हैं, जिससे भविष्य में प्रभावित लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने में मुश्किलें पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। इसलिए खाने पीने की चीजें और अन्य जरूरी सामान समय पर पहुंचाने के लिए अन्य संसाधनों की तलाश की जा रही है। इस बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास यरमूक स्थित एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप युद्ध में लगभग पूरी तरह तबाह हो गया है। इस शिविर की हालत को संयुक्त राष्ट्र की राहत और बचाव कार्य एजेंसी UNRWA के अध्यक्ष पियर क्रहन बुहल ने इतना तबाह हो चुका स्थान बयान किया है जितना उन्होंने कभी नहीं देखा। पियर क्रहन बुहल ने हाल ही में यरमूक स्थित फिलिस्तीनी शिविर का दौरा किया था। वो संयुक्त राष्ट्र के ऐसे पहले वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें उस इलाके में जाने की इजाजत मिली। यरमूक फिलिस्तीनी शिविर में किसी वक्त करीब 1,60,000 तक लोग रहते थे, लेकिन अब वहां भारी तबाही के निशान हैं। प्रवक्ता क्रिस गुनेस ने पियर क्रहन बुहल की यरमूक यात्रा का और ब्यौरा देते हुए कहा,
Yarmouk is a hellhole. It's completely destroyed, as our Commissioner General Pierre Krembel said. It now lies in utter ruins, as he said. Wherever one looks, the horror experienced by inhabitants of Yarmouk.
Yarmouk नरक का नमूना पेश करता है, जहां हर तरफ भारी तबाही के निशान मौजूद हैं। जैसा कि हमारे कमिश्नर जनरल पियर क्रहन बुहल का कहना है कि यरमूक अब भारी तबाही और बर्बादी के ढेर में जिंदगी के निशानों को सहेजने की कोशिश कर रहा है। उनके शब्दों में कहें तो जिस तरफ भी नजर जाती है, लोगों की तकलीफों और नरक जैसे हालात का सामना करने के निशान नजर आते हैं। यरमूक में एक बहुत कामयाब और खुशहाल समुदाय रहता था, जिसमें हर आर्थिक पृष्ठभूमि के फिलिस्तीनी लोग तमाम वर्गों से संबद्ध सीरियाई लोगों के साथ खुशहाली से रहते थे। लेकिन गहरे अफसोस की बात है कि युद्ध ने वो खुशहाली और समुदाय सब तबाह कर दिए हैं। UNRWA के प्रवक्ता क्रिस गुनेस के शब्द। यरमूक से विस्थापित होने वाले कुछ लोग याल्दा भी पहुंचे हैं। एजेंसी के मुखिया पियर क्रहन बुहल ने याल्दा का भी दौरा करके हालात का जायजा लिया। एजेंसी वहां भी लोगों को जरूरी सामान और भोजन पानी मुहैया करा रही है। एजेंसी के मुखिया ने राजधानी दमिश्क के दक्षिणी हिस्से में स्बीनेह स्थित शिविर का भी दौरा किया, जहां एजेंसी ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए स्कूल, क्लिनिक और सामुदायिक केंद्र बहाल किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश का दौरा करके वहां अस्थायी शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या रेफ्यूजीज यानी शरणार्थियों की दुख भरी दास्तानें सुनी हैं और उनके हालात का जायजा लिया है। गौरतलब है कि म्यांमार में सेना और सुरक्षा बलों की हिंसा से बचने के लिए करीब 7,00,000 रोहिंग्या लोग पनाह लेने के लिए बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम भी इस यात्रा में महासचिव के साथ थे। उन दोनों ने कॉक्सिस बाजार का दौरा किया, जहां रोहिंग्या रेफ्यूजीज को शिविरों में रखा गया है। ये अब दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर बन गया है। वहां पहले से भी कुछ रोहिंग्या और अन्य शरणार्थी रह रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने और ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि महासचिव ने रोहिंग्या शरणार्थियों की हालत देखकर बहुत तकलीफ महसूस की है, क्योंकि उनके साथ जिस तरह का बर्ताव म्यांमार में हुआ उससे किसी का भी दिल दहल सकता है।
The Secretary General said that it is impossible to visit the camps without being heartbroken over the suffering of the Rohingya people. He said he had listened to terrible stories of massive violence.
महासचिव ने रोहिंग्या लोगों के साथ हुई ज्यादतियों की दर्दनाक आपबीती सुनी, जिसमें लोगों की हत्याएं होने, लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार होने और बहुत से घर और तमाम गांव के गांव जला दिए जाने के मामले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र उप प्रवक्ता फरहान हक का यह भी कहना था कि महासचिव ये देखकर भी बहुत हैरान और परेशान हुए कि कॉक्सिस बाजार में किस तरह करीब 9 लाख लोग बहुत ही दयनीय और खराब हालात में रहने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता लियू जिया के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता जताई है। लियू जिया को 2010 से ही नजरबंद किया हुआ है। हाल ही में लियू जिया की आवाज में रिकॉर्ड की गई कुछ अपीलें सामने आई हैं, जिनमें उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। 4 वरिष्ठ मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि लियू जिया को किसी अज्ञात स्थान पर नजरबंद करके रखा गया है और वो अब बहुत गंभीर मनोवैज्ञानिक दबाव और तनाव से गुजर रही हैं। लियू जिया एक कवियत्री हैं और वो पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लियू जियाओबो की पत्नी हैं। लियू जियाओबो का साल 2017 में जेल में ही निधन हो गया था। लियू जिया को साल 2017 में अपने पति के अंतिम संस्कार के दौरान ही सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। उस समय भी उनके साथ चीन सरकार के अधिकारी मौजूद थे। चीनी अधिकारी इन आरोपों का खंडन करते हैं कि लियू जिया को उनकी मर्जी के बिना कहीं रखा गया है। लियू जिया की नजरबंदी को 2011 में संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यदल यानी यूएन वर्किंग ग्रुप ने चीन सरकार की मनमारी कार्रवाई करार दिया था। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने आग्रह किया है कि लोगों को तुरंत लियू जिया से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए, साथ ही उन्हें अपनी इच्छानुसार अपना इलाज कहीं भी कराने की छूट दी जाए। इलाज कराने की ये सुविधा चीन के बाहर भी हो सकती है। तो ये थी साप्ताहिक समाचार परिक्रमा संयुक्त राष्ट्र रेडियो से। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।